विचार तक ही रहने दें। संबंधित तीन श्लोक जिस विच गुरु नानक देव जी महाराज ने सूतक पातक का जिक्र किया है, जन्म ते मरण दे नाल साडे देश विच सूतक ते पातक नूं मनदे ने, उस घर नूं अपवित्र मनदे ने, उस घर नूं सूतक लग्या मनदे ने, पातक लग्या मनदे ने जिथे कोई मृत्यु हो गई है या किसी का जन्म होया है। पर गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान है, जन्म ते मरण व्यापक है। जमीन ते एक हथ भी ऐसी जगह नहीं जिथे जन्म ते मरण चल ना रहा हो। सूक्ष्म जगत है, अति सूक्ष्म है, अति अस्थूल है। जिस तरह परमात्मा व्यापक है, इस तरह जगत दे जन्म ते मरण व्यापक है। और जन्म ते मरण दे नाल ही सूतक पातक मनना है तो परमात्मा की तरह सूतक ते पातक व्यापक ही होया। फिर कोई ऐसा घर नहीं जिथे सूतक नहीं, फिर कोई ऐसा घर नहीं जिथे पातक नहीं। इत्थे तर्क खड़ी होवेगी कि हर घर दे ते मृत्यु नहीं है, हर घर दे ते जन्म नहीं है, किसी किसी घर दे कदों कदों जन्म है, किसी किसी वक्त है। तो सूतक पातक किसी किसी वक्त किसी घर च हो सकता है, और वह भी कुछ घर हो सकता है, सारिया दे च नहीं। लेकिन गुरु नानक देव जी महाराज एक उदाहरण देंदे ने, जमना ते मरना सिर्फ मनुख का थोड़ी है, और वाकई जन्म ते मरण दे नाल ही सूतक पातक जोड़ना है तो अनंत जीव जम रहे ने, मर रहे ने। जैसे कि महाराज कहंदे ने, जेकर सूतक मनिए सब ते सूतक हो, जे मनना है तो फिर सूतक व्यापक है। फिर कोई भी घर ऐसा नहीं जो सूतक तो बचे होवे। मसलन गोहे अते लंकड़ी अंदर कीड़ा होए, जो घर विच बालन बालदे हां चाहे किसे तरह दा भी है, उहदे नाल अनंत जीव मर जांदे ने, बेशुमार जीव बल मर जांदे ने। धरती दे उत्ते किसे थां ते भी अग बालीए, बस अग दे बालदिआं ही जीव मरण गए। इहदे सूतक लग गया, पातक लग गया। महाराज कहिंदे सिर्फ इतना ही नहीं, जेते दाने अन्न के जिया बाज न कोए। जे सूतक मृत्यु दे नाल मनना है, जन्म दे नाल मनना है, तो कम से कम मनुख अन्न ते खांदा है, अनाज ते खांदा है, तो अनाज दे अंदर भी जीव है। और जिस वक्त असी अन्न दे दाणियां नूं भुनदे हां, वो उछलदे ने और आवाज भी करदे ने। ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਬਕਾਇਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੀਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤਨਾ ਜੀਵ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਨ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਸੂਤਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੂਤਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਵੇਖੀਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਇ। ਸਮੂਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਹਰਿਆਵਲੀ ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਪਹਿਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੇ ਚ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਣਾ ਭਇਆ, ਪਵਣੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਾਜਿਆ, ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮੋਏ। ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪਵਨ ਹੋਈ, ਧੁੰਦ ਹੋਈ, ਗੈਸ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਅਨੰਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ। ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੀਆਂਗੇ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੀਂਦਿਆਂ ਵੀ ਸਭ ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜੀਵ ਅੰਦਰ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਚ ਵੀ ਕੀਟਾਣੂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ जीव है जित हरिया सब कोए, सूतक क्यों कर रखिए। सूतक पवे रसोए, किस तरह तुसी सूतक नु मनोगे ते रखोगे। प्रथम ते हर बंदे दी रसोई दे च ही सूतक है, क्योंकि उत्थे भोजन बन रहा है, सब्जियां बन रही ने, साग दालां बन रही ने और रोटियां बन रही ने, इस दे च जीव मर रहे ने, बेशुमार जीव मर रहे ने। तो इस तरीके नाल किसे दी भी रसोई सुची नहीं है, बिटी हुई है, सूतक लगे होया है, पातक लगे होया है। महाराज कहंदे ने कि वास्तविक ए सूतक भरम ते ही खड़ा है। नानक सूतक एव ना उतरे, ज्ञान उतारे दोए। ए सूतक ए डिठ, ए मलनता, ए अपवित्रता इस तरीके नाल नहीं उतरेगी जिवें कि जगत सोचदा है भई इस घर दे सूतक लगे है, इत्थे कुछ खाना पीना नहीं, इहदे नाल पिटना नहीं। महाराज कहंदे नहीं, सूतक ज्ञान नाल उतरेगा। जिथे ज्ञान है उन्हूं कोई सूतक पातक नहीं लगता। जिथे ईश्वर दा ज्ञान है वह कतई अपवित्र होंदा ही नहीं। नानक सूतक एव ना उतरे, ज्ञान उतारे धोए। पर संत जन महापुरुष अक्सर कहंदे ने कि फलाना मैला हो गया है, अपवित्र हो गया है। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने वह जिहड़ी अपवित्रता है उसका जन्म ते मरण दे नाल संबंध नहीं है, क्योंकि यह जिहड़ा जमना ते मरना है यह ते प्रभु का हुक्म है। ते जे इस नाल ही सूतक पातक लगता है तो फिर परमात्मा का हुक्म भी निर्मल नहीं हो सकता, उहदी बनाई हुई मर्यादा भी पावन नहीं हो सकती। तो फिर सूतक क्या बिल्कुल नहीं है? इतनी व्याख्या करन तो बाद गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने सूतक है, पातक है, वास्तविक सूतक है। और वो केड़ा है? सतगुरु कहंदे ने मन का सूतक लोभ है, जेवा सूतक कूड़। हैगा सूतक मन दा जिहड़ा सूतक है वो लोभ है। लोभी दा मन पावन हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोभी दा मन अपने आप दे च होंदा ही नहीं, अपने घर दे च होंदा ही नहीं। उस लोभी दा मन अपने तन दे च होंदा ही नहीं, हमेशा दूसरे दे तन दे च होंदा है। लोभी दा मन अपने धन दे च होंदा ही नहीं, दूसरे दे धन दे च होंदा है। लोभी दा मन अपने परिवार दे च होंदा ही नहीं, वो दूजी थां ते होंदा है। इस वास्ते साहिब कहंदे ने कि मन दा जो सूतक है वो लोभ है। जिहवा सूतक कूड़, जबान दा सूतक है झूठ बोलना, मिथ्या बोलना, गलत बयानी करनी। ये रसना दा सूतक है, अखी सूतक वेखना पर तिरिया पर धन रूप। अख दा सूतक ए है कि प्राय धन नू लोभ दी दृष्टि नाल वेखना, प्राय तन नू वासना दी दृष्टि नाल वेखना। ए अखां दा सूतक है। और इसे तरीके नाल कन्नी सूतक, कन पै लाए तबारी खाए। कन दा सूतक ए है कि झूठ निंदा चुगली कन्ना नाल मनुख शौक नाल सुने, बड़ा रस मिलदा है जद कन किसी दी निंदा सुनदे ने। बड़ा दुख हुंदा है जद किसी दी उपमा होवे। मनोविज्ञानिक भी कहंदे ने कि मनुख उपमा भी सुनना चाहुंदा है बशर्ते अपनी होवे, मनुख निंदा भी सुनना चाहुंदा है बशर्ते दूजे दी होवे, मनुख निंदा भी करना चाहुंदा है बशर्ते दूजे दी होवे, और मनुख निंदा सुनना भी चाहुंदा है जद दूसरे दी होवे, अपने दी नहीं। महाराज कहंदे ने ए कन्ना दा सूतक है जो झूठ ते चुगली कन्ना नाल सुननी है और अपना मन किसे बारे मैला कर लेना है। फरमान नानक हंसा आदमी बद्धे जमपुर जाए। इस तरह दा जो आदमी है जिहदे मन विच लोभ दा सूतक है, जिहदी अखां विच पराए तन ते धन दा सूतक है, जिहदे कन्ना विच पराई चुगली ते निंदा सुनन दा सूतक है, महाराज कहंदे ऐसा मनुख जमपुरी विच जाएगा, बार बार जमेगा, मरेगा। ऐसा मनुख अनंत जन्म अपने ख्वार करेगा। नानक हंसा आदमी बद्धे जम पुर जाए। अगर सूतक है तो जिस सूतक तो अनंत जन्मां दा दुख पैदा होंदा है, वो यही सूतक है। जिड़ा सूतक आम जगत देच मनिया जांदा है, उदे बारे सतगुरु कहंदे ने सबो सूतक भरम है दूजे लगे जाए। सारे दा सारा सूतक जो मनिया जांदा है, जिसका संबंध जन्म ते मरण दे नाल है, महाराज कहंदे ने भरम है। भरम तो मुराद यह है कि चीज कुछ होर होवे, दिखाई कुछ होर दे, इसनु कहंदे ने भ्रांति हो गई है, इत्थे भरम पैदा हो गया। जैसे अंधेरे दे कारण करके रस्सी सप दिखाई देने लग पे, तो भ्रांति है, भरम है। अगर सप दिखाई दे गया तो कदम रुक जाएंगे, डर पैदा हो जाएगा, खौफ पैदा हो जाएगा, चलना रुक जाएगा। पर यह भी स्पष्ट है कि वो सप नहीं है। सप प्रतीत होया है अंधार अंधकार करके, कोई लालटेन ले आया है, रोशनी कीती है, रोशनी नाल हनेरा नस गया है, तो अंधकार ही नहीं नसया, सप भी नस गया है। उन सप भी कोई नहीं, उन रस्सी दिखाई दे रही है, उन सप तो है नहीं। तो जब अंधकार दूर हो गया, सप दूर हो गया, तो भय भी मिट गया। अज्ञानता दे अंधकार करके वस्तु कुछ होर आंदी है, दिखाई कुछ होर देती है। इस वास्ते अज्ञानता दा अंधकार मिटदा है ज्ञान दे प्रकाश दे नाल। तो इस वास्ते साहिब कहंदे ने सबो सूतक भरम है भ्रांति है, ये ते अज्ञानता है। दूजे लगे जाए, इहदे नाल मनुख सच तो उखड़ के द्वैत विच पै जांदा है, दुबधा विच पै जांदा है। जदके जम्मण मरना हुक्म है, भाणे आवे जाए, ये जमना ये मरना ते प्रभु दा हुक्म है। ये कोई मनुख दी बनाई हुई मर्यादा नहीं है। इसनु गुरु नानक देव जी महाराज इंज कहंदे ने, जोर न जीवन मरण न जोर। साडा जन्म होया है, इस दे साडा जोर नहीं, इस दे साडा चुनाव भी नहीं। साडी मौत होवेगी, उस दे साडी इच्छा नहीं, साडा जोर नहीं। ये जन्म ते मरण महाराज कहंदे ने हमरे वस ना है, जन्म मरण हमरे वस ना है, इति प्रभु दे हाथ च है। जद अकाल पुरख तो ही जमना मरना चल रहा है, तो उदे नाल सूतक पातक जोड़ना, ये अकाल पुरख दे नाल ही सूतक पातक जोड़ना है। जद के अकाल पुरख वो परिपूर्ण परमात्मा ते महा निर्मल है, पवित्र है। जमण मरना हुक्म है, भाणे आवे जाए। मनुख रब दी रजा दे आउंदा है जाउंदा है, उदी रजा करके जीव जमदे ने मरदे ने। खाना पीना पवित्र है, दितोन रिजक समाए। उस परिपूर्ण परमात्मा ने सिर सिर जीवा नु रिजक दिता होया, और ये खाना पीना कतई अपवित्र नहीं। किधरे खाने पीने नाल भी कोई सूतक पातक जोड़ देवे, बई इस घर दा खाना पातक है, सूतक है, क्योंकि इस घर दे च जमना होया मरना होया। अज भी असी देख रहे हैं कि किसी घर दे च मृत्यु हो जाए तो पड़ोसी खाना बना के लेंदे ने, उस घर दे च नहीं बनाया जांदा, बई इस घर दे च सूतक है, खाना भ्रष्ट हो जाएगा। इस नाल भी गुरु नानक देव जी महाराज सहमत ने। आप कहंदे ने खाना पीना पवित्र है, किसी दे मरण नाल किसी दे जमण दे नाल खाना पीना अपवित्र नहीं होंदा, खाना पीना मलीन नहीं होंदा। खाने दते जन्म दा की प्रभाव, मरण दा की प्रभाव। अगर किसी दी मृत्यु हो गई है या कोई जम पे है तो कह दिता जाए खाना भ्रष्ट हो गया, इस घर दा भोजन नहीं छकया जा सकता। साहब कहने नहीं, खाना पीना पवित्र है, दितों नु रिजक संभाए। सारियां नु उसने संभाल के रिजक दिता होया, ते खाना पीना पावन है। नानक जिनी गुरमुख बुझया तिन्ना सूतक ना है। गुरु द्वारा गुरु तो जिन्हां नु ए सोझ मिल गई है, समझ मिल गई है, उन्हां नु सूतक नहीं है, उन्हां नु अपवित्रता नहीं है। भगत कबीर भी गुरु नानक देव जी महाराज के इन्हां ख्यालों नाल सहमत ने। एक दिन ऐसा होया, आप खड्डी बुन रहे सन। कपड़ा बुनदिया बुनदिया लोई आपकी पत्नी आई थाली विच भोजन लेके। आपने उत्थे हाथ धोते ते बैठिया ही बैठिया उस खड्डी ते भोजन करन लग पे। एक तार्किक ने एक ब्राह्मण ने कह दिता, इतने वड्डे भगत बने फिरदे हो पर थानू ते भोजन छकण दी भी जाच नहीं, रोटी खाण दा भी ढंग नहीं। तो भगत कबीर कहिंदे ने, ब्राह्मण देवता चलो तू मैनू दस जा फिर ढंग, सुची थां ते बैठ के भोजन छकना चाहिदा है। जिथे बैठ के तू कम पिया करदा है उत्थे ही रोटी खाण लग पे है। भोजन छकण लई पावन जगह चाहिदी है, पवित्र जगह चाहिदी है। तो सवालिया फिकरा भगत कबीर सामने रखते ने, कहो पंडित सूचा कौन था जहां बैस हो भोजन खाओ। हुण तू ही मैनू दस कि जगह केड़ी सुची है। प्रथम माता झूठी पिता भी झूठा, झूठे ही फल लागे आवे झूठे जाए भी झूठे, झूठे मरे अभागे। जे सच जाने हर एक मनुख दे मां बाप भी झूठे ने। कुछ ना कुछ मन विच लोभ आउंदा है, कुछ ना कुछ दृष्टि विच आउंदा है, कुछ ना कुछ कन्ना विच पराई चुगली दा रस आउंदा है। कोई विरला ही मनुख होवेगा जिहदी मां सुची होवे, जिहदा पिता सुच्चा होवे, या जिसकी पत्नी सुची होवे ते उन्होंने भोजन बनाया है ना, उन्होंने प्रसाद बनाया है। जे झूठिया ने प्रसाद बनाया है तो इंज कह लो इतने बनिया ही झूठा है। अगर तेरी मनोत नू मनी है फिर झूठिया तो झूठ ही जमदा है। आवे झूठे जाए भी झूठे, झूठे मरे अभागे। कहो पंडित सूचा कौन थाओ जहां बैस हो भोजन खाओ। ब्राह्मण ने कहा, कबीर गऊ का गोबर लेपना चाहिदा धरती ते। उस लेपी हुई जमीन ते पानी दे छिट्टे मार के थाल रखना चाहिदा, फिर भोजन छकना चाहिदा। तो कबीर कहिंदे ने, गोबर झूठा चौका झूठा झूठी दीनी कारा। जे मेरी दृष्टि च गोया ही झूठा होवे ते फिर ये किस तरह पावन करेगा, किस तरह पवित्र करेगा। अपनी धारणा है, अपनी अपनी मनोत है, मैं इसनु पावन नहीं मनदा और इते झूठा है। इस झूठे गोबर दे नाल चौका सुच्चा किस तरह हो गया। भगत कबीर कहिंदे ने, ब्राह्मण देवता मैंने तेनू दसा सुच दा जन्म किवें हुंदा है, पवित्रता किवें पैदा हुंदी है। गोबर झूठा चौका झूठा झूठी दीनी कारा, कहो कबीर ते नर सूचे साची परी विचारा। जिसदे हिरदे विच सच दी विचार है, जो सच दा चिंतन कर रहा है, वो जिथे भी बैठा है जगह नू सुच्चा करेगा, न के सुखी ची जगह ते बैठ के वो सुच्चा होवेगा। नहीं, वो जिथे बैठेगा उदे बैठन नाल जगह सुची होवेगी, वो जिथे बैठेगा उदे बैठन नाल जगह पावन होवेगी, वो जिथे बैठेगा उसके बैठन नाल ही पवित्रता आले दुआले फिर लेगी। एक सूफी फकीर की गाथा याद आई। अक्सर एक पिंड की गली चो रोज लंघदा सी। कदी कदाई पिंड वासी उसके भिक्षा पात्र विच भोजन पा देंदे ने। कदी कोई बस्त्र दे देंदा है, कदी कोई फल इत्यादक दे देंदा है, लेकिन फकीर मंगदा नहीं, खामोशी दे नाल लंघ जांदा है। एक दिन एक बुजुर्ग नेता ने जो महल्ले दा मुखी से कह दिता, फकीर साई रोज गली तो लंघदे हो ते गली दे वासी थोड़े भिक्षा पात्र नू भर देंदे ने, पर कम से कम तुसी कुछ उपदेश दे के जाया करो, साडे हिरदिया नू भी भरो। कोई परमात्मा दी गल सुना के जाओ, कोई परमात्मा दी प्रेरणा दे के जाओ, कुछ बोलो कुछ दसो। फकीर कहन लगा, अगर मेरे लंघन दे नाल किसे नू कुछ नहीं मिलिया تو میرے بولن نال بھی کسے نو کچھ نہیں ملن لگا، جے تینوں میرے لنگن نال کچھ نہیں پراپت ہویا تو یاد رکھ میرے بولن نال بھی کچھ نہیں پراپت ہویا، اگر میرے کول کچھ ہے تو میں بنا بولاں تو ہی دے جاواں گا۔ ایسا پرش اپنے شریر دے آلے دوالے ایسی پوتر ترنگا نو جنم دیندا ہے کہ پاس دے لوگ پربھاوت ہوندے نے، اس دی گرفت دے چاہندے نے، اس پوترتا دا باقاعدہ اثر ہوندا ہے۔ اسی واسطے آکھیا جاندا ہے کہ جس تھان تے بیٹھ کے لگاتار نام جپیا جائے اور بہت سارے جپن اور بہت مدت تک جپیا جائے وہ جگہ جیونت ہو جاندی ہے، اتھے دھرم دا جیون پیدا ہو جاندا ہے، اتھے روحانی زندگی پیدا ہو جاندی ہے۔ ناستک تو ناستک منکھ بھی اگر اس جگہ تے چلا جائے اس دا من اندولت ہوئے گا، اس دے من تے پربھاؤ پائے گا۔ اس واسطے پرتھوی دتے جیوت مندر بہت تھوڑے نے، جتھے بیٹھیے تے روحانی جیون ملے۔ جس طرح منکھاں دیاں آتماواں مردیاں نے، چیتنا بالکل مردہ ہو چکی ہے، بیشتر دھارمک مندر بھی مردہ نے، جتھے بیٹھ کے چین نہ ملے، جتھے بیٹھ کے سکون نہ ملے، کہنا پائے گا اے مندر مرتک مندر ہے، اتھے تے مردمی چھائی ہوئی ہے، اتھے بیٹھے ہاں کوئی جیون پراپت نہیں ہو رہا۔ بھگت پیپا جی تے کہندے نے جس ہردے وچ پرماتما دا نام ہے وہ منکھ چلدا پھردا ہری دا مندر ہے، وہ منکھ چلدا پھردا تیرتھ ہے۔ کایو دیوا کایو دیول کایو جنگم جاتی، دیول دیو استھان نو کہندے نے، مندر نو کہندے نے۔ بھگت پیپا جی کہندے نے ہن میری کایا ہی مندر بن گئی ہے، کایو دیوا ہن میری کایا ہی دیوتا بن گئی ہے، ہن میری کایا ہی دھارمک مندر بن گئی ہے، دیو استھان بن گئی ہے۔ کایو دیوا کایو دیول کایو جنگم جاتی، ہن میری کایا ہی تیرتھ یاتری ہے۔ پر ینگم وچردا ہویا، تھان تھان تے بھرمدا ہویا، کایو جنگم جاتی کایو دھوپ دیپ نہیں بیدا کایو پوجو پاتی، ہن مینو باروں پھل کٹھے کرن دی لوڑ نہیں، میری کایا ہی پھل بن گئی ہے، ہن مینو باروں اگربتی دھوپ دیپ اتیادک دی لوڑ نہیں، میری کایا ہی اگربتی بن گئی ہے، ہن میری کایا دے وچ ہی مہک ہے، ہن میری کایا ہی کوملتا دی پردرشنی کردی ہے، کوملتا دا پرگٹاوا کردی ہے۔ اس واسطے مینوں کسے طریقے دی ہن سگندھی دی لوڑ نہیں، ہن کایا ہی سگندت ہو گئی ہے۔ کایا بہوکھنڈ کھوجتے نو نے دپائی، نہ کچھ آئے بو نہ کچھ جائے بو رام کی دہائی۔ اس کایا وچ کھوجدیاں کھوجدیاں میں نو ند نام دی پراپتی کر لئی ہے، اور جس دن دی پراپتی کیتی ہے کایا مندر بن گئی ہے، کایا دھارمک استھان بن گئی ہے۔ ایسا جو منک ہے کسی گلی تو بھی لنگے گا سمچی گلی نو دھرم مندر بنا جائے گا۔ ایسا منک جس ماحول وچ بیٹھے گا چاروں پاسے پوترتا ہی کھلیرے گا۔ پاہی گرداس نے ایک گاتھا لکھی ہے بڑی سندر، ادھی رات دا وقت ہے، بدل گرج رہے ہیں اور اچانک موسلا دھار بارش ہون لگی، گلی وچوں ایک سادھو لنگ رہا ہے، ٹھنڈ دے دن اوپر برسا، پر گلی ویسوا دی گلی سی، گنکا لوگاں دی گلی سی۔ دوار تے دستک دتی، بوا کھولیا، ایک بی بی نے ایک ویسوا نے۔ سادھو کہندا ہے ماں باہر بڑی ٹھنڈ ہے، زور دا مینہ ہے، تو مینو بیٹھن لئی تھوڑی تھان دے۔ اشارہ کر دیتا ویسوا نے بیٹھ جاؤ، پر جیسے او ویسوا دے کوٹھے چ بیٹھا او دی کایا تو جیڑیاں پوتر لہراں پرگٹ ہوئیاں، ویسوا دی زبان تو رام رام نکلنا شروع ہویا، جو اس تو پہلے کتے ہی نکلیا ہی نہیں سی، جو اس تو پہلے اس نے کدی اچارن نہیں کیتا سی۔ اس دی درشٹی پئی مہاتما دی ویسوا تے، درشٹی وچ امرت سی، ਉਹਨੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਕੋਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ ਗਿਆ। ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਈ ਇਹ ਵੇਸਵਾ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਵਰਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਥੰਮ ਗਈ। ਸਾਧੂ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਠਾ ਕੋਠਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਦੇਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਸੰਤ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕੋਠੇ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕੋਠੇ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਅਸੰਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰੇ, ਮਲੀਨ ਕਰੇ, ਮੈਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਸੰਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਖਲੇਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਵਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਕਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਝ ਤੇ ਸਮਝ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਤਕ ਨਹੀਂ ਪੌੜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰਸਾ ਲਾਈਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸਮਾਧੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਲਾਹ, ਕਿਆ ਇਹ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ? ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰਸਾ ਲਾਈਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡਿਆਈਆਂ, ਸੇ ਮੈਲੇ ਤਨ ਅਦਰੀ ਆਈਆਂ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੜਿਆਈਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸ ਆਈਆਂ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੜਿਆਈਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਣ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ। ਪੂਰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਹਰ ਧਰਿਆ, ਸੋਚਣੀ ਸਾਰੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਰੀ ਮਿਟ ਗਈ। ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ।